नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कपिल और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मल्ले नीरव। मल्ले जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद अभिषेक।
सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के एचएस प्रणय और किदांबिनी श्रीकांत दूसरे दौर में पहुंचे। खेलो इंडिया बीच गेम्स में हरियाणा और दिल्ली ने सेपक टकरा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं कर्नाटक और महाराष्ट्र ने ओपन वाटर तैराकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। और ISSF जूनियर विश्व कप में हरियाणा की कनक ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल T20 क्रिकेट में आज मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस का मुकाबला जारी है। ये मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी टीम इसमें जीतेगी उसकी आगे की राह होगी प्लेऑफ की आसान। तो मल्ले जी, क्या कहता है ये मुकाबला
ये कह रहा है कि मुंबई की टीम दरवाजे पर दस्तक दे रही है प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, और ये मुकाबला ये भी कह रहा है कि दिल्ली के लिए अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। तो देखना यह है कि क्या दिल्ली की उम्मीदों का दीपक अभी टिमटिमाता रहेगा या आज बुझ जाएगा। और साथ साथ ये भी देखना होगा कि मुंबई को अभी और आगे मशक्कत करनी होगी शीर्ष वहां प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, या फिर आज ही फैसला हो जाएगा। क्योंकि अगर मुंबई जीतती है तो बल्ले बल्ले, और अगर दिल्ली हारती है तो फिर दिल्ली के लिए बाय बाय, विदाई।
वही अभी तक स्कोर कार्ड कहता है कि मुंबई इंडियंस बल्लेबाजी कर रही है, दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। वानखेड़े में ये मुकाबला हो रहा है तो मुंबई इंडियंस ने अभी 11 ओवर 5 गेंदों में 3 विकेट खोकर 94 रन बना लिए हैं। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव इस वक्त क्रीज पर हैं।
दोनों से काफी उम्मीदें हैं। जिस प्रकार से रायन रिकल्टन ने शुरुआत की थी धुआंधार, 18 गेंदों में 25 रन बनाए थे, 2 छक्के भी उसमें शामिल थे, और जिस प्रकार से रोहित शर्मा गए तो एक निराशा हाथ लगी, कंधे झुक गए सारे मुंबई प्रेमियों के। और फिर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, इससे अच्छी जोड़ी हो नहीं सकती है। 16 गेंदों में 19 रन स्काई ने और तिलक वर्मा ने 20 में 23 रन बनाए हैं। तो कुल मिलाकर अभी बहुत कुछ हाथ से गया नहीं है, लेकिन अगर आप पहले 10 ओवर के एनालिसिस करें, उसका विश्लेषण करें, तो उसमें जो 5 ओवर बाद के थे उसमें सिर्फ 40 रन बने। शुरुआत तेजी से हुई लेकिन उसके बाद विकेट गिरे, और 3 विकेट गिरने के बाद शुरुआत जो रफ्तार थी रनों की वो कम हो गई। तो इस प्रकार से अभी कुछ ऐसा नहीं है कि कहा जा सके कि मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि अगर 12 ओवर में 95 रन बने हैं तो लगभग 8 का स्कोरिंग रेट है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो टीम पहले वहां बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है, जो कि अभी लग रहा है मुंबई इंडियंस के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में मौसम बिगड़ रहा है और मुंबई का मौसम बिगड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में अगर मुंबई में मौसम की मार कहीं हो गई तो फिर मुंबई के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, और उम्मीदों के लिए, दिल्ली की उम्मीदों के लिए अच्छी बात होगी कि दिल्ली सोचेगी कि चलो एक तो जीते, अब आगे फिर देखते हैं।
तो जैसा हम अक्सर कहते हैं कि आईपीएल में अब वक्त हो गया कैलकुलेटर निकालने का, तो दिल्ली के लिए क्या वही मुकाबला है? आज अगर दिल्ली मैच जीतती है तो उसके बाद उसका अगला मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ है, और मुंबई इंडियंस को भी पंजाब किंग्स के साथ खेलना, प्लेऑफ में जगह बची है एक। तो अगर दिल्ली आज जीतती है तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि मुंबई अगला मैच हारे और दिल्ली फिर अगला मैच जीते।
बिल्कुल, ये जरूरी है, और उसमें भी दिल्ली के लिए आगे पहुंचने के रास्ते में सबसे बड़ी बात है ये होगी कि उसको दूसरी टीमों पर निर्भर रहना होगा कि दूसरी टीमें कैसा करती हैं। तो अपने खेल की बदौलत जब आप पहुंचते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ा रहता है। लेकिन मुंबई इंडियंस की अगर हम बात करें अभिषेक, तो आपने देखा है कि अतीत में भी मुंबई इंडियंस की टीम ने, मतलब हारते हारते जीतने वाली जो जगह होती है उसको बना के रखा और अंत में अपनी जगह बना ली वहां पहुंच के। तो देखिए अब क्या होता है, क्रिकेट का खेल है, निश्चितताओं का खेल है, अब आगे आगे देखिए होता है।
एक वक्त पे तो चेन्नई और मुंबई एक साथ ही थी, और अब देखो चेन्नई 10वें स्थान पर है, मुंबई आगे बढ़ बढ़ के 4थे स्थान पर आ गई है।
बिल्कुल, और चेन्नई के लिए ये साल ऐसा साल गया है जो उन्हें शायद वो भूलना चाहें, जितनी जल्दी भूलें उतना अच्छा है, क्योंकि चेन्नई की टीम से जो उम्मीदें थीं उन पर वो कहीं खड़े नहीं उतर पाए उनके खिलाड़ी, और ये निराशाजनक प्रदर्शन उनका कहा जाए।
लेकिन इस सीजन में आरसीबी के फैंस पर एकदम गदगद हैं।
और गदगद होने की बात भी है, अच्छा खेला है और अच्छा संघर्ष किया है। देखिए एक बात है कि जब आप के कंधे नहीं झुकते हैं, जब आप उस मूड में होते हैं कि ठीक है अब हारे तो हारे, आगे खेलना है, आगे अच्छा करना है, तो जब उस तरह से अब आगे बढ़ते हैं तो इतने लंबे टूर्नामेंट में कब बाजी पलट जाएगी कहना मुश्किल होता है। अभी भी देखिए, अभी प्लेऑफ लंबा खिंच जाएगा, अगर आज हार गई दिल्ली की टीम तो लंबे अभी और लंबा खींचेगा, प्लेऑफ में पहुंचने का रास्ता जो है वो थोड़ा और लंबा हो जाएगा दोनों टीमों के लिए। तो ये तो ऐसा टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है, और जितनी देर तक ये टूर्नामेंट चलता है उसमें इस तरह की चीजें होती रहती हैं।
वहीं आईपीएल में कल अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। तो जहां एक तरफ गुजरात टाइटंस एकदम शीर्ष पर जमी हुई है और एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स है जो प्लेऑफ में तो कवायद में पहुंचने के बाहर हो गई है, तो ये मुकाबला आप कैसे देखते
हैं? ये मुकाबला रॉयल ये इनके लिए गुजरात टाइटंस के लिए मुकाबला बहुत 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 जरूरी है उनके लिए जीतना, और इसलिए जरूरी है कि अगर वो जीत जाते हैं तो उनका एक मेजर ऑब्जेक्टिव जो होता है, मेन जो चाहते थे उद्देश्य, जो जिस लक्ष्य को प्राप्त करना, वो लक्ष्य तो वो प्राप्त कर चुके हैं, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि लीग स्टेज में उनको ये तय करना है कि वो टॉप टू फिनिश उनकी होती है कि नहीं। इसलिए वो चाहेंगे कि लखनऊ की टीम जो कि खराब फॉर्म में है, दिख रहा है बहुत कुछ कर नहीं पा रही है, उनको हराकर और शीर्ष दो स्थानों में अपना स्थान बनाए। और ये एक और भी मौका है उनके लिए कि वो देखें कि किस तरह से जो खिलाड़ी अभी तक उन्होंने ट्राई नहीं किए हैं, जो अभी तक बेंच पर बैठे रहे हैं, उनको कितनी जगह मिले।
बैडमिंटन में एचएस प्रणय और किदाम्बी श्रीकांत आज मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए, जबकि पीवी सिंधु को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
प्रणय ने जापान के पांचवी वरीयता प्राप्त केंटा निशिमोटो को 82 मिनट तक चले मुकाबले में 19-21, 21-17, 21-16 से हराया। श्रीकांत ने क्वालिफायर से आगे बढ़ने के बाद चीन के छठी वरीयता प्राप्त लू गुआंगजू को 23-21, 13-21, 21-11 से हराया। सतीश करुणाकरण ने चीनी ताइपे की तीसरी वरीयता प्राप्त चौ टियन चेन को 21-13, 21-14 से हराया। वहीं आयुष शेट्टी ने कनाडा के ब्रायन यांग को 20-22, 21-10, 21-8 से हराया। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु महिला सिंगल्स में वियतनाम की गुएन थ्यू लिन से 11-21, 21-14, 15-21 से हार गई। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने इंडोनेशिया के इंदा कहाया सारी जमील और अदनान मौलाना को 21-18, 15-21, 21-14 से हराया। महिला डबल्स में प्रेरणा अलवेकर और मृणमयी देशपांडे अगले दौर में पहुंच गई, जबकि कविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी, रश्मि गणेश और सानिया सिकंदर अपने शुरुआती मैच हार गई। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
मले जी, इन परिणामों को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, ये ऐसा वर्ष है जब पुरुषों के एकल वर्ग में बैडमिंटन में भारत के लिए अभी तक कुछ खास दिखाने और करने का मौका नहीं मिला था। जो अगर आप BWF वर्ल्ड टूर की बात करते हैं तो इसमें ये जो कुआलालंपुर में जो मलेशिया मास्टर सुपर 500 इवेंट है, इसमें एचएस प्रणय, श्रीकांत किदम्बी, श्रीकांत, ये तो दोनों पुराने नाम हैं, दोनों जाने पहचाने नाम हैं और इनसे उम्मीद कभी भी लगाई जा सकती है क्योंकि फॉर्म ऊपर नीचे होता रहता है, क्लास हमेशा टिका रहता है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है, जो आपने कहा कि परिणामों से क्या नजर आ रहा है, आप देखिए सतीश कुमार, करुणाकरण और आयुष शेट्टी, ये नए चेहरे हैं और इन्होंने बड़े बड़े नामों को हराया है। तो इस तरह से जो दुनिया के नंबर 30वें वरीयता क्रम में 30वें खिलाड़ी हैं ब्रायन यांग, उनको आयुष शेट्टी ने हराया और प्रणय ने केंटा निशिमोटो को हराया जो 12वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। तो इस तरह से जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जब करुणाकरण ने विश्व नंबर 7 को वेटरन, मतलब चूतियन चैन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि कभी भी कोई टूर्नामेंट जीत सकते हैं, उनको अगर पहले राउंड में ही उन्होंने रास्ता दिखा दिया वापस अपने कोठरी में जाने का, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जीत है और इससे बहुत अच्छा संदेश जाता है। और एक लाइन में बस ये कहूंगा कि पीवी सिंधु चोट से उबर नहीं पाई, ऐसा लग रहा है अभी भी लड़खड़ाती नजर आ रही हैं।
और बैडमिंटन में अगर सिंगल्स में देखें तो भारत का ग्राफ थोड़ा सा नीचे गया था, वो भी उठा है।
बिल्कुल, यही मैंने बात जो की आपसे, खास करके पुरुषों के एकल वर्ग में भारत को अब एक बार फिर नई उम्मीदें नजर आ रही हैं।
हरियाणा और दिल्ली ने आज खेलो इंडिया बीच गेम्स में महिला और पुरुष टीरो टीम फाइनल में पारंपरिक खेल सेपक टकरा में मजबूत टीम मणिपुर के खिलाफ जीत दर्ज की। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
महिलाओं के फाइनल में हरियाणा ने अनुभवी मणिपुर की टीम के खिलाफ 2-1 से जीत हासिल की। कप्तान 20 वर्षीय मोनिका की अगुवाई में हरियाणा की महिला सेपक टकरा टीम ने शीर्ष सम्मान हासिल करने के लिए उत्साह और युवा जोश से भरपूर प्रदर्शन किया। पुरुष वर्ग में दिल्ली ने रोमांचक फाइनल में मणिपुर को 2-1 से हराया। दिल्ली टीम के कप्तान 35 वर्षीय संदीप कुमार रहे। मणिपुर ने इस प्रतिस्पर्धा में 2 रजत पदक जीते। नागालैंड और उत्तर प्रदेश ने महिलाओं की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जबकि असम और तमिलनाडु ने पुरुषों की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। दूसरी ओर कर्नाटक और महाराष्ट्र ने ओपन वाटर तैराकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। कर्नाटक के रेणुकाचार्य होदमानी और महाराष्ट्र की दीक्षा यादव ने बुधवार को अरब सागर में आयोजित 10 किलोमीटर ओपन स्पर्धाओं में क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स, फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स, अब खेलो इंडिया बीच गेम्स। ये खेलो इंडिया का ग्राफ, मतलब प्लेयर आते जा रहे हैं, ख्याति प्राप्त करते जा रहे हैं।
खेलो इंडिया एक ऐसा टर्फ है, एक ऐसा मैदान है जिसपे जब अब नई प्रतिभाएं सामने आती हैं तो उनको निखारने का जो मार्ग है वो अपने आप नजर आने लगता है। ये वो बच्चे हैं जिनको मछली की आंख दिखाई दे, इसी बात पर जोर देना जाता है, उनको मछली दिखाई दे इस पर जोर नहीं दिया जाता। अगर आप इसकी बात करें बीच गेम्स की, तो आज देखिए कि महिलाओं की सेपाक टकराव में खिलाड़ियों की बात करें तो आयनम चावबा देवी और खुशबू, ये दोनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने तहलका मचाया था 2022 के एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर, कांस्य पदक जीतकर। और ये सबसे बड़ी बात है कि दादरा नगर हवेली दीव लक्षद्वीप जो समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र हैं वहां तो लोग खेल लेते हैं, लेकिन जब दिल्ली हरियाणा की टीम वहां जाके कहती है और जब बालू पर खेलना होता है, रेत पर ना, पैर फंस जाते हैं, भाग नहीं पाते हैं, दौड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये खेलो इंडिया में ने ये विश्वास पैदा किया है कि जो लोग समुद्र तट पर नहीं भी रह रहे हैं वो भी दुनिया में अपना नाम ऊंचा कर सकते हैं।
भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम आज अर्जेंटीना के रोजारियो में 4 देशों के टूर्नामेंट के लिए रवाना हुई। ये टूर्नामेंट 25 मई से 2 जून तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें भारत, अर्जेंटीना, उरुग्वे और चिली शामिल हैं। तो इस जो ये प्रतियोगिता हो रही है 4 देशों के बीच में, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसमें दिसंबर में होने वाले जूनियर महिला विश्व कप के लिए इसकी तैयारी के तौर पर देख रहे हैं। संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं भारतीय टीम की।
देखिए, भारतीय टीम का जहां तक सवाल है, तुषार खंडेकर इसके कोच हैं और कैप्टन हैं, गोलकीपर निधि और फॉरवर्ड हिना बानो इसकी वाइस कैप्टन हैं। ये वो लड़कियां हैं जिनमें वो जज्बा है जो बहुत कम देखने को मिलता है, और ये उन्हीं लड़कियों की तरह हैं जिन्होंने, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले ओलंपिक्स में जिनके आंसू टपके थे जब उनको चौथा स्थान मिला था, उसी श्रेणी की ये लड़कियां हैं। और मैं कहता हूं कि जो चारों चिली, उरुग्वे, अर्जेंटीना के साथ भारत के मुकाबले होंगे वो जूनियर विश्व कप से पहले बहुत निर्णायक मुकाबले होंगे।
हरियाणा की उभरती हुई निशानेबाज कनक ने आज जर्मनी के सुहेल में ISSF जूनियर विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में शीर्ष पर रहकर भारत का स्वर्ण पदक का खाता खोला। एडियन कर्माकर ने पदार्पण करते हुए 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर प्रतियोगिता में भारत का खाता खोला था। श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। मले जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।